पृष्ठ 90 पाश्चात्य महाकाव्य। पाश्चात्य देशों में महाकवि होमर के इलियड और ओडेसी आदर्श महाकाव्य माने जाते हैं। अन्य महाकाव्य जैसे वर्जिल का इनियड अथवा मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट इन्हीं के नमूने पर बने हैं। इनियड में रोम के संस्थापक रोम्यूलस के पिता के साहसपूर्ण कार्यों का वर्णन है। उसमें होमर की दोनों पुस्तकों की कथा का योगदान है। पैराडाइज लॉस्ट में ईश्वर के विरुद्ध शैतान का विद्रोह, आदम का बहकाया जाना, मनुष्य के पतन और ईश्वर द्वारा उसके उत्थान का वर्णन है। उसमें किसी जाति विशेष का भाग्य निर्णय नहीं, वरन ईसाई धर्म के अनुकूल सारी मानवता का उत्थान है। उसका उद्देश्य ईश्वरीय न्याय का उद्घाटन है। To justice the ways of God to man। रामायण से इलियड और ओडेसी की तुलना। रामायण की तुलना प्रायः इलियड और ओडेसी से की जाती है। इन काव्यों और रामायण में कुछ बातों की समानता अवश्य है। वाल्मीकि रामायण की भांति ओडेसी का प्रचार भी गाकर हुआ है। गाने वाले रैप्सोडोई कहलाते थे। इलियड में जिस लड़ाई का वर्णन है उसका आरंभ भी एक स्त्री के हरे जाने के कारण हुआ था। ओडेसी की नायिका बड़ी सती साध्वी थी। उस पुस्तक में भी विवाह संबंधी परीक्षा में एक धनुष के झुकाए जाने की शर्त का उल्लेख है। सतीत्व के आदर्श में कुछ बहुत समानता है। हम यह नहीं कहेंगे कि सतीत्व केवल भारतीय स्त्रियों के ही बाट में आया है। वास्तव में प्राचीन भारतीय और यूनानी सभ्यताओं में इतना अंतर भी नहीं था। उस दिनों दोनों ही देशों में धनुष ही प्रधान आयुध था। इन सब समानताओं के होते हुए भी इन काव्यों का रामायण से अंतर है। रामायण के नायक स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, अतः उनका देवताओं के साथ संघर्ष का कोई प्रश्न रामायण में उठता ही नहीं है। उसमें संघर्ष राक्षसों से है। देवता मनुष्य रूपधारी भगवान की सहायता करते हैं और वे भी देवताओं के कार्य के लिए ही संसार में आने का कष्ट करते हैं। रामायण की यह धार्मिक भावना इलियड या ओडेसी में नहीं है। सतीत्व के आदर्श में भी थोड़ा भेद है। सीता जी वाणी से भी रावण के वरण करने की बात स्वीकार नहीं करती। ओडेसी पृष्ठ 91 की नायिका कम से कम यह तो कह देती कि वह विशेष वस्त्र के बुने जाने पर विवाह कर लेगी। वह दिन को वस्त्र बनाती थी और रात को उसे छिन्न भिन्न कर देती थी, किंतु सीता ने निर्भय होकर रावण का तिरस्कार किया, विशेषकर जब कि वह राक्षसियों से दिन रात घिरी रहकर रावण की अशोक वाटिका में रहती थी। मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में तो ईश्वर के विरोध में शैतान का जो तर्क है वह उस देश की तत्कालीन मनोवृत्ति का परिचायक है। पाश्चात्य मनोवृत्ति के संघर्ष में संघर्ष अधिक है। हमारे यहाँ के देवताओं में भी दंड देने की प्रवृत्ति है, किंतु रामायण में देवताओं और मनुष्यों का संघर्ष नहीं है, वरन देवताओं और दानवों का संघर्ष है। संस्कृत के महाकाव्य। यद्यपि भारतीय समीक्षा शास्त्रों में स्वाभाविक और कलात्मक का विभाजन नहीं है, तथापि हम वाल्मीकि रामायण को स्वाभाविकता की कोटि में रख सकते हैं और शिशुपाल वध तथा किरातार्जुनी को कलात्मक कह सकते हैं। इलियड और ओडेसी के संबंध में कुछ लोगों की शंका है कि शायद ये एक ही कवि की रचना न हो और होमर भी व्यास शब्द की भांति संपादक की पदवी हो। भारतीय दृष्टि से तो व्यास एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने 18 पुराण और महाभारत लिखे, किंतु अंग्रेज समीक्षक उन्हें एक व्यक्ति नहीं मानते हैं। वाल्मीकि रामायण के लिए यह शंका नहीं हो सकती है, किंतु उसमें प्रक्षिप्त अंश अवश्य है। यदि उसका प्रचार गाकर हुआ है, जैसा कि रामायण और रघुवंश दोनों से ही है प्रतीत होता है, तो उनमें घटाए बढ़ाए जाने की अधिक प्रथम रामस्य वाल्मीकि कृतिस्तो किन्नर सनो किम तद्येन मनोहर्तु मलम स्याताम न श्रीमताम रघुवंश। अर्थात वृत रामचंद्र जी का था, कृति वाल्मीकि जी की थी और उसके गाने वाले किन्नर कंठ दोनों बालक थे, तो सुनने वालों के मन को हरने के लिए कौन सी बात पर्याप्त न थी। इसमें चरित नायक कवि और गायक तीनों को महत्व दिया गया है। हमारे यहाँ महाभारत को इतिहास माना है, किंतु अंग्रेजी मान से उसे ही इपिक या महाकाव्य कहते हैं। महाभारत में इतनी अनविति नहीं है जितनी की रामायण में। वह भारतीय संस्कृति का विश्वकोश अवश्य है। इसके संबंध में कहा गया है, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत् क्वचित्। संस्कृत के महाकाव्यों में स्वाभाविकता और कलात्मकता के विभिन्न स्तर है। कवि कुलगुरु कालिदास में स्वाभाविकता और कलात्मकता का बड़ा सुखद सम्मिश्रण है। इसलिए तो उनके संबंध में कहा गया है कि कवियों की गणना में कालिदास का नाम पहला है और दूसरा कवि उनकी टक्कर का न होने के कारण दूसरी उंगली अनामिका ही रही। कुछ लोग माग को तीनों पृष्ठ 92 गुणों उपमा अर्थ गौरव और पद लालित्य से संपन्न मानकर शीर्ष स्थान देते हैं। यद्यपि कालिदास के रघुवंश को वृत्रयी में स्थान नहीं मिला है, तथापि उसकी विशेष ख्याति है। वह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें रघुवंश के कई राजाओं का काव्यात्मक वर्णन है, परंतु दिली रघु और राम के लोकोत्तर चरित्रों को प्रधानता दी गई है। इसी के कारण शायद साहित्य दर्पण को लिखना पड़ा कि महाकाव्य का विषय एक राजा ही नहीं वरन एक वंश के कई राजा हो सकते हैं। एक वंशे भवाह भूपाह कलुजा कुलजा बहवो अपि वा, उसमें 19 वर्ग है। उसके वृत्रयी में स्थान न मिलने का यही कारण मालूम होता है कि भारतीय लोक रुचि स्वाभाविकता की अपेक्षा पांडित्य को अधिक महत्व देती है। कालिदास के तीनों ग्रंथ रघुवंश कुमार संभव और मेघदूत लघुत्रयी में आते हैं, किंतु कुल मिलाकर कालिदास में कवित्व अधिक है। इसी से कहा है, काव्य अपमाघ्य कवि कालिदास। महाकाव्य के बृहत्रयी में तीन ग्रंथ आते हैं, श्रीहर्ष का नैषद चरित, माघ का शिशुपाल वध और भारवी का किरातार्जुनीय। नैषद चरित में राजा नल का चरित है। यह ग्रंथ का माघ का पशुपाल वध अपने पांडित्य के लिए बड़े प्रसिद्ध है। रघुवंश के बाद दूसरा नाम भारवी के किरातार्जुनीय का है। भारवी दक्षिण भारत के रहने वाले थे। किरातार्जुनीय का कथानक महाभारत से लिया गया था और 18 सर्ग में है। इसमें अर्जुन और किरात वेशधारी भगवान शंकर के युद्ध का वर्णन है। महादेव जी से अर्जुन का पशुपात अस्त्र का प्राप्त करना इस महाकाव्य का फल है। इसमें श्रृंगार आदि रस गौण है और द्रौपदी के प्रोत्साहन से पांडवों को युद्ध के लिए उत्तेजना दी गई है। माघ का शिशुपाल वध उनका कीर्ति स्तंभ है। इसका कथानक भी महाभारत से लिया गया है। इसमें युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदी नरेश शिशुपाल के वध की कथा बड़े कौशल के साथ वर्णित है। उसी घटना के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। इसकी कथा 20 सर्गों के 1650 श्लोकों में फैली हुई है। संस्कृत में और भी छोटे बड़े महाकाव्य और खंड काव्य है, किंतु उनका उल्लेख यहाँ पर स्थानाभाव से नहीं किया गया है। ऊपर के ग्रंथों के विषय में कुछ न जान कर सांस्कृतिक अज्ञता का द्योतक होता है होगा। संस्कृत के शास्त्र काव्यों में भट्टी काव्य का स्थान प्रमुख है। शास्त्र काव्य उन्हें कहते हैं जिनमें की काव्य के साथ साथ व्याकरण आदि शास्त्रों का परिज्ञान करा दिया जाता है। भट्टी द्वारा लिखा हुआ काव्य उनके ही नाम से प्रसिद्ध है, जिसका विषय रावण वध है। इस काव्य में प्रायः 3,500 श्लोक 20 सर्गों में आबद्ध है। भट्टी ने अपने काव्य के विषय में कहा है कि व्याकरण जानने वालों के लिए यह काव्य दीपक के समान है, किंतु उसके न जानने वाले के लिए यह अंधे के हाथ की अर्थी है। व्याकरण के शास्त्रीय ज्ञान से अनभिज्ञ लोगों के लिए इसका रसास्वाद पृष्ठ 93 कराना करना कठिन है।